ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महामदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वस भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है अध्याय 16 दैवी तथा औषधीय स्वभाव डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। ये अध्याय भगवद गीता का एक बहुत सिग्निफिकेंट अध्याय है, 16वां अध्याय। एक्चुअली ऐसे सारे अध्याय अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हर अध्याय एक एक थीम को कवर करते हैं। तो इस अध्याय में, इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा था चैप्टर 15 में भगवान ने भौतिक संसार की तुलना एक बरगद के वृक्ष से की थी और उसको हमने डिटेल में देखा था। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि बरगद के वृक्ष जैसे सामान्य वृक्ष को जल के द्वारा पोषित किया जाता है, वैसे ही भौतिक वृक्ष को है, भौतिक संसार का जो ये वृक्ष है इसको प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा पोषित किया जाता है। और ये प्रकृति के तीन गुण उस वृक्ष की ऊपर वाली शाखाओं को भी पोषित करते हैं, नीचे वाली शाखाओं को भी पोषित करते हैं। तो जो ऊपर शाखाएँ हैं वो शुभ शाखाएँ कहलाती हैं और नीचे जो शाखाएं हैं वो अशुभ या आसुरी प्रकृति की शाखाएं कहलाती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सभी को प्रभावित करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि उस पेड़ के जो एक मेन जड़ होती है जो ब्रह्मलोक से निकलती है, उसके अलावा कुछ और जड़ होती हैं वो जीवों के कर्म को बताती हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म, अच्छे कर्म खराब कर्म, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में 16वें अध्याय में भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन कौन से गुण हैं जिससे व्यक्ति उस वृक्ष में ऊपर की शाखाओं में जाते हैं और फाइनली मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से गुण हैं जिसके द्वारा व्यक्ति नीचे आसुरी पशु योनि में जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने इस चैप्टर में ग्राफिकली डिस्क्राइब किया है आसुरी और दैविक स्वभाव को, और इस चैप्टर को इस तरह से थीम पर्टिकुलर तीन थीम है इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर में 24 श्लोक हैं। सबसे पहले भगवान बताना प्रारंभ करते हैं कि जो दैवीय गुण होते हैं उनके बारे में भगवान बताना चालू करते हैं, और ये इस प्रकार के भगवान 26 गुण बताते हैं। ये 26 गुण जो हम वैष्णवों के 26 गुण समझते हैं उनसे अलग हैं ये गुण। कुछ कुछ गुण मिक्स हो सकते हैं परंतु उनसे अलग गुण है ये। और भगवान इन गुणों में हर आश्रम में क्या क्या गुणों की आवश्यकता है वो भी बताते हैं। कुछ गुण सभी आश्रमों के लिए कॉमन हैं, कुछ गुण हर आश्रम के लिए स्पेसिफिक हैं। तो शुरू में भगवान ऑलमोस्ट 5 श्लोक तक ये गुणों के बारे में बताते हैं, और उसके बाद 26 डिवाइन गुण बताने के बाद भगवान 6 डेमोनिया क्वालिटीज बताते हैं, और फिर बाकी का जो अध्याय है 6वें 7वें श्लोक से लेके 20 श्लोक तक, करीब 13-14 श्लोक जो भगवान बताते हैं वो आसुरी स्वभाव के ऊपर भगवान बताते हैं। और 5वें श्लोक के अंत में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन जो है वो दैवीय स्वभाव में है, क्योंकि जब भगवान आसुरी स्वभाव को डिस्क्राइब करने वाले हैं तो अर्जुन के मन में डाउट हो सकता है कि वो युद्ध करना दैवीय स्वभाव में है कि आसुरी स्वभाव में है। तो भगवान इसलिए अर्जुन को क्लैरिफाई कर देते हैं कि आप दैवीय स्वभाव में हो, और भगवान बताते भी हैं उस श्लोक में कि क्यों अर्जुन को भगवान दैवीय स्वभाव में मान रहे हैं। उसके बाद तो ऑलमोस्ट 20 श्लोक तक, 16.7 से 20 तक भगवान डिस्क्राइब करते हैं असुरों के गुणों को, और उसके बाद अगले 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कैसे आसुरी गुणों से बाहर निकल सकते हैं। हमारी चॉइस है कि हम आसुरी गुणों से बाहर निकल के भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में फ्लो करेंगे। ये इस चैप्टर का फ्लो है 3 सेक्शन के अंदर। तो शुरू के 3 श्लोकों में हम देखेंगे, आप अगर पुस्तक में देखेंगे तो 26 गुण भगवान ने एक साथ दिए हुए हैं। अभयम सत्व संशुद्धि से प्रारंभ होके भवंती संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। और इन गुणों को हम देखेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है इस श्लोक का, और बहुत वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन दिए हैं दैवी गुणों के ऊपर। तो इस श्लोक पे हम समय ज़्यादा देंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य भी बहुत लंबा लिखा हुआ है। तो श्री भगवान उवाच, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जव अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेश्व लोलुप्तम आर्द्रम हीव चापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। कौन कौन से गुण भगवान बता रहे हैं? हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, मतलब दूसरों के फॉल्ट नहीं देखना, और समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सभी दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इस तरह से भगवान ने ये 26 गुण जो हैं ये बताए हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में हर गुण के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गुण बताते हैं भगवान, अभयम। अभयम मतलब बिना भय के। तो सामान्यतः सभी भक्तों में ये गुण होना चाहिए, परंतु यहाँ पे जो वर्णाश्रम में, किस आश्रम में ये गुण बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये संन्यास आश्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन्यासी सामान्यतः संसार में अकेले घूमते हैं और भगवान की कृपा पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, निर्भय होते हैं। तो उनको इस गुण की बहुत ज़रूरत होती है, उनको हमेशा ये कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान परमात्मा के रूप में उनके साथ हमेशा उपस्थित हैं। तो इसलिए सन्यासी के लिए ये गुण बहुत आवश्यक है। वर्णाश्रम समाज जो है, जो भगवत प्राप्ति का बहुत इफेक्टिव तरीका है, इफेक्टिव प्रकार है, उसमें जो संन्यास आश्रम है उसमें भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति को, सन्यासी को सामान्यतः अकेला रहना पड़ता है, इसलिए भगवान की कृपा ही उनका एकमात्र सहारा है, क्योंकि समाज से सारे संबंध तोड़ने के बाद सन्यासी की रक्षा के लिए और कोई नहीं होता है। तो व्यक्ति को पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसके हृदय में है परमात्मा के जैसे, तभी वो सन्यास स्वीकार कर सकता है। दूसरा जो गुण है वो भी सन्यासी के लिए है, सत्व संशुद्धि। हालांकि ये जो गुण हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी भक्तों के अंदर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे विशेष रूप से किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सत्व संशुद्धि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, परंतु स्पेसिफिक सन्यासी, चूंकि वो समाज के लीडर होते हैं, वो भगवान आध्यात्मिक ज्ञान में सभी को गाइड करते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत मैंडेटरी है, ये अति आवश्यक है। तो सन्यासी के लिए प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सारे नियमों को अच्छे से पालन करना, और सन्यासी के लिए विशेष रूप से एक नियम होता है कि स्त्री के साथ सन्यासी का संग बहुत कम होना चाहिए। सन्यास आश्रम इस तरह से है कि चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि सन्यास आश्रम में जो व्यक्ति होते हैं वो एकदम सफ़ेद चादर के जैसे होते हैं, उस सफ़ेद चादर के ऊपर एक भी हल्का सा भी काला कलर का दाग लग जाता है तो वो दाग सबको दिखाई देता है। सन्यासीर अल्प छिद्र सर्व लोके गाए, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। तो सन्यासी को किसी स्त्री के साथ उसका घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए। घनिष्ठ संबंध इन द सेंस कि बहुत हार्ट टू हार्ट रिलेशन और प्राइवेट टॉक, प्राइवेटली बात करना, और इस तरह से ये वस्तुएं सन्यासी के जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन्यास आश्रम बहुत इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है। और इसके बाद अगला आता है, जैसे इसमें लिखा है, चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे, जब वो पुरी में रहते थे तो भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने के लिए नहीं आने दिया जाता था, दूर से ही प्रणाम करते थे। ये स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव नहीं है, परंतु सन्यासी का प्रतिबंध है कि स्त्रियों से निकट संपर्क रखना उनको नहीं चाहिए। इस्कॉन संस्था जो कि प्रचार की संस्था है, तो इस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु का नियम था, चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से करते थे वो पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री पास भी नहीं आएंगी, परंतु सन्यासी जो हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं हो, प्राइवेट कनेक्शन या डीप कनेक्शन या बहुत रेगुलर, बहुत सारी बातों में डिस्कस करना हो, ये वस्तुएं नहीं होना चाहिए, वो सन्यासी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तीसरा आता है कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, ये भी सन्यास के लिए है। सन्यासी का ड्यूटी है कि दिव्य ज्ञान को खुद प्राप्त करें और लोगों को दें। सन्यासी स्वभाव से पूरे वर्णाश्रम के गुरु होते हैं, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और लोगों को देना चाहिए। इसके बाद अगला जो आइटम है वो सन्यासी के लिए नहीं है, वो गृहस्थ के लिए है, चैरिटी। गृहस्थ को बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ को चैरिटी देना चाहिए, उससे उसका जो कमाई होता है वो शुद्ध हो जाता है। जितना अगर गृहस्थ भगवान के कार्यों में लक्ष्मी को देता है तो उससे शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सभी के लिए है, विशेष रूप से गृहस्थ के लिए है। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि गृहस्थ आश्रम कोई इस तरह से नहीं है कि किसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए छूट मिल गई है, नहीं, वो भी एक आश्रम है। प्रभुपाद एक ऑस्ट्रेलिया में एक लेक्चर में बताते हैं कि डोंट बिहेव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस कैट्स एंड डॉग्स देर इज़ नो नीड टू प्रोड्यूस, देर आर सो मैनी कैट्स एंड डॉग्स। तो प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति अगर केवल इंद्रिय भोग के लिए स्त्री को स्वीकार करता है, शादी करता है और अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से इंद्रिय भोग करता है, तो उस व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है, और समाज में भी जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो कैरेक्टर के बच्चे नहीं होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि गृहस्थ जीवन भी उपयोग किया जाना चाहिए, जिस केवल कृष्ण भक्त बच्चे जब पैदा हों तो उनको कृष्ण भक्ति की तरफ ले जाना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी है कि कृष्ण भक्ति उनको सिखाएं बच्चों को, तब वो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। और अननेसेसरी इंद्रिय भोग की आवश्यकता नहीं है, पति पत्नी दोनों को भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे रहना चाहिए, तो इंद्रिय भोग की इच्छा भी नहीं होगी और इंद्रिय भोग के लिए हमें नियंत्रित रखना होगा। इसके बाद अगला जो आइटम है सेक्रीफाइस, यज्ञ करना, ये भी गृहस्थ के लिए है, सभी के लिए है। संकीर्तन यज्ञ कलयुग में हम बताते हैं कि बाकी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, संकीर्तन यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सस्ता भी है, आसानी से किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट भी है। इसके बाद वैदिक अध्ययन, वैदिक अध्ययन स्टूडेंट लाइफ में है, ब्रह्मचारी इसके लिए, और शास्त्रों में अपने दिमाग को लगाना। तपस्या सभी के लिए है क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है, तपोदिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। 50 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, उसके बाद जब बच्चे बड़े होकर जॉब करने लगते हैं तो उसको वानप्रस्थ आश्रम में स्वीकार करके तो उसमें तपस्या करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं, लाइफ ऐसे ही चली जाएगी। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप तपस्या नहीं करेंगे तो ये श्योर है कि आपका अगला जन्म पशु योनि में होने वाला है। इसके बाद अगला आइटम है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी सभी के लिए आवश्यक है। सिंप्लिसिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अंदर और बाहर समान विचार रखना, लोगों से कपट भावना नहीं होना। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा का मीनिंग है किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति है उसको नहीं रोकना। जैसे कृष्ण भक्ति लोगों को नहीं देना भी एक प्रकार से हिंसा करना है। अगर हम लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो हम उस आत्मा को भगवान के पास जाने से रोक रहे हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करना भी अहिंसा कहलाता है। इसलिए हमें बहुत प्रचार करना चाहिए कृष्ण भक्ति का, जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बताना चाहिए क्योंकि सभी कृष्ण के पुत्र हैं। उसके बाद अगला आइटम आता है सत्य बोलना। केवल अपनी खुशी के लिए, अपने काम बनाने के लिए हमें सही को थोड़ा घुमाना फिराना नहीं चाहिए, जो है वो सत्य बोलना चाहिए। जैसे अगर भगवान हमें बताते हैं तब बात अलग है, नहीं तो सामान्यतः हमें हमेशा सत्य का आश्रय लेना चाहिए। जैसे भगवद गीता बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, लोग उन कमेंट्रीज में लोग सही नहीं बताते हैं, उनका जो व्यू पॉइंट है वो बताते हैं, परंतु भगवान जो बताना चाहते हैं वो नहीं बताते हैं। इसलिए शास्त्रों को समझने की भी एक तरीका है कि हमें प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। उसके बाद अगली क्वालिटी है क्रोध से मुक्ति। क्रोध हम जानते हैं कि काम से क्रोध जन्म जन्म होता है, और क्रोध जब क्रोध एक्चुअली तमोगुण में भी चला जाता है। तो हर आश्रम के लिए जरूरी है कि हो सकता कभी गुस्से का कोई क्षण आए जब हमें गुस्सा करना पड़े, परंतु गुस्से के समय हमें सहन करना चाहिए। सहन करने से गुस्सा रुक जाता है, क्योंकि गुस्सा पूरे शरीर को कंटेमिनेट करता है, पूरे शरीर गुस्से से प्रदूषित हो जाता है। वैदिक समय में ऐसा था कि अगर किसी को गुस्सा आता था तो उसको तुरंत नहाने जाना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर कंटेमिनेट हो गया है गुस्से के कारण। इसके बाद अगला गुण होता है त्याग। त्याग आप सभी जानते हैं। उसके बाद अगला गुण है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, पीसफुलनेस। चीज़ें, डिस्टर्बिंग वस्तुएं संसार में आती हैं, कभी लड़ाई होती, कभी अच्छा होता है, कभी सुख होता है, दुख होता है, इन सबसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना। अगला गुण आता है अपैशुनम, मतलब लोगों में फॉल्ट फाइंडिंग से बचना। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब, सामान्यतः हम सभी सोचते हैं कि हमारे अलावा संसार में कोई भी परफेक्ट व्यक्ति नहीं है और हम ही सबसे बड़े हीरो हैं। तो सभी के मन में ऐसा होता है कि दूसरे की गलती कैसे देखें। हम सभी ऐसा करते हैं कि कोई व्यक्ति को देखते हैं तो उसको इसी तरह से देखते हैं कि ये कैसे कोई गलत काम कर रहा है जो कि मैं नहीं करता, और फिर लोगों को बताते हैं कि देखो देखो वो व्यक्ति ऐसा है, ये है, वो है। तो ये सबका नेचर होता है, और ये नेचर किस लिए आता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हम बेस्ट हैं, आई एम द बेस्ट। हम भूल जाते हैं कृष्ण बेस्ट हैं, हम बेस्ट नहीं हैं। हमने इतने पाप किए हुए हैं, परंतु तब भी हम सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम वर्स्ट हैं एक्चुअली। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है वो कभी भी दूसरे की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता। उसको लगता है कि मैं ही इतना गिरा हुआ हूँ, मैं दूसरे की फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करूँगा, दूसरे में गलतियाँ कैसे देखूँगा। इसके बाद अगला गुण आता है सभी जीवों के प्रति दया करना। सभी जीवों के प्रति दया करना, जैसे प्रभुपाद ने बताया था कि लोगों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को पुस्तकें देना, लोगों को भगवान का नाम प्रदान करना, भगवद गीता का नॉलेज प्रदान करना, ये जीवों के प्रति दया है। क्योंकि जिस आत्मा के पास ये वस्तुएं जाएंगी, प्रसाद, भगवान की पुस्तकें, भगवान का नाम, वो आत्मा भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला गुण आता है कवेटसनेस, मतलब लोभ। लोभ बोल सकते हैं। संसार में बहुत ऊंची वस्तुओं के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। ऊंची मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं, उस आधार पे हमें संसार में रहना चाहिए। अगर हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं प्राप्त करने के लिए, तो फिर हम वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगला गुण आता है जेंटलमैन। स्वभाव से बहुत अच्छे, मृदु मधुर होना चाहिए, सभी के प्रति मित्रता होनी चाहिए। उसके बाद अगला गुण इसमें आता है कोई भी पाप के कार्य नहीं करना चाहिए, मॉडेस्टी। ही लिखा है मार्दवम हीर चापलम। उसके बाद अगला गुण आता है अचापलम, मतलब स्टडी। स्टडी का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर इतना दृढ़ प्रतिज्ञ होता है कि कोई भी कठिनाई आ जाए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखता है, धैर्य भी उसके अंदर रहता है। उसके बाद तेजस। तेजस मतलब विगर। क्षत्रियों के लिए स्पेशली ये जरूरी है कि उनको दूसरे, जिनको सम्मान की जरूरत है, जिनकी रक्षा की आवश्यकता है, उनकी रक्षा के लिए क्षत्रिय तैयार होना चाहिए। क्षमा भी क्षत्रियों का एक लक्षण है, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, और कभी कभी क्षमा के द्वारा उनको माफ करना, और फोर्टिट्यूड। उसके बाद अगला गुण आता है फोर्टिट्यूड को एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, हाँ, कि फोर्टिट्यूड मतलब ये फोर्टिट्यूड धृति और स्टडी अचापलम, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। धृति का मतलब भी होता है कि अपना मन को स्ट्रांग रखना जबकि कठिन सिचुएशन हमारे सामने आती है। उसके बाद अगला गुण बताया जा रहा है शौचम, मतलब स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता। हम जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा बाह्य स्वच्छता, शरीर को स्नान कराना 2 बार कम से कम, 3 बार, 2-3 बार कम से कम, साफ वस्त्र पहनना, अपने शरीर को साफ रखना, और लोगों से अच्छा व्यवहार करना, वो भी बाहर की स्वच्छता कहलाती है। उसके बाद ईर्ष्या से मुक्ति, दूसरे की सफलता से नहीं जलना कि दूसरा हमसे आगे निकल जाए तो उसके उसके कारण हम उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं, ये ईर्ष्या कहलाता है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है, क्योंकि ईर्ष्या ऐसा अनर्थ है जो कि बहुत मुश्किल से जाता है। इसके बाद अगला आता है तमोगुण से मुक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो नहीं होना चाहिए। वो कैसे दूर होगा? जब हम दूसरों को सम्मान ज़्यादा करेंगे तो हमें अपने लिए सम्मान की इच्छा कम हो जाएगी। ये दोनों तरफ से सही है। अगर हम अपने अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं करेंगे तो हम दूसरों के लिए अच्छा सम्मान कर सकते हैं। तो कल हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि पफ्ड, जो व्यक्ति पफ्ड राइस जैसा होता है, फूल जाता है सम्मान के कारण, घमंड के कारण, वो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में आके उतनी जल्दी टूट भी जाता है। तो हमें ज़्यादा ज़्यादा इच्छा नहीं होनी चाहिए कि सभी लोग आके हमें सम्मान दें। जैसे कई बार हम भक्तों का नाम अनाउंस करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि ये भक्त टीम में थे, उसमें से किसी भक्त को भूल जाओ तो भक्त पीछे से आके बोलता है, फिरोजी आपने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया और भगवान का ऑल्टर बंद हो गया, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ। तो अच्छा है वो, परंतु उस भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सारी चीज़ों का क्रेडिट मिलना चाहिए। हमें सेवा करना चाहिए, क्रेडिट भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान अगर देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं ज़रूरत है। तो सबके सामने सम्मान पाने की इच्छा अच्छी नहीं है भक्ति के लिए। हालांकि सीनियर्स को ऐसा चाहिए कि अगर किसी ने कुछ सेवा किया है तो उसका सम्मान करें, परंतु उस व्यक्ति को ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे सभी लोग सम्मान करें। तो ये दैवीय गुण हैं जो कि भगवान बता रहे हैं। ये 26 गुण दैवीय प्रजाति के लोगों में पाए जाते हैं। इस श्लोक को आप पढ़िएगा ध्यान से, तात्पर्य को। इसके बाद भगवान चौथे श्लोक में 6 गुण ऐसे बता रहे हैं जो कि आसुरी गुण हैं। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। दम्भ मतलब अहंकार, दर्प मतलब घमंड। अहंकार और घमंड दो अलग अलग वस्तु हैं। अहंकार का मतलब कि अपने आप को गलत नहीं समझना और साथ साथ अपने आप को शरीर समझना, ये भी दम्भ कहलाता है। और दर्प मतलब प्राइड, कि मैं हमेशा अच्छा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, अपने आप को बेस्ट समझना, वो दर्प कहलाता है। अभिमान मतलब गर्व, क्रोध मतलब गुस्सा, पारुष्य मतलब निष्ठुरता और अज्ञान मतलब अज्ञान। तो 6 गुण बताए हैं। इंग्लिश में उनको बोलते हैं प्राइड। प्राइड का मीनिंग होता है, प्राइड मतलब दम्भ होता है। दम्भ का मतलब यहाँ पे लिखा, एक और मतलब लिखा है कि जो असुरिक लोग होते हैं वो धर्म का शो दिखाते हैं परंतु धर्म के नियमों को पालन नहीं करते। लोगों को दिखाने के लिए लगता है कि बहुत अच्छे से नियम पालन कर रहे हैं परंतु वास्तविकता में धर्म के नियमों को पालन नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा गुण है एरोगेंस, जो कि दर्प बोला गया है। दर्प मतलब व्यक्ति घमंड से इतना पागल हो जाता है कि वो दूसरों के प्रति बहुत खराब व्यवहार करता है, उसकी डीलिंग्स खराब हो जाती हैं और उसको घमंड होता है कि उसने कोई बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है, बहुत धन उसके पास है। इसका घमंड भी एरोगेंस में आता है। उसके बाद आता है कंसीट, अभिमान। अभिमान मतलब लोगों से सम्मान पाने की इच्छा, उसको अभिमान बोला जाता है। उसके बाद क्रोध और हार्शनेस मतलब पारुष्यम निष्ठुरता, बोलने में हार्शनेस, बहुत खराब तरीके से बोलना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि उनके बात करने का अंदाज इस तरह से होता है कि लगता है कि पत्थर मार रहे हो। कई बार नेचुरली भी ऐसा होता है। कुछ कुछ लोग कुछ कुछ रीजन से ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बोलचाल थोड़ी इस तरीके से होती है। तो परंतु सामान्यतः व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बोलता है बोलने से स्वीटनेस हो, लोगों को सुनने में अच्छा लगे। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि लोग भाग जाएं सुन के। उसके बाद अज्ञान। तो इस श्लोक में नरक पे जाने वाले हाईवे का डिस्क्रिप्शन है। रॉयल रोड टू हेल प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, नरक के राजमार्ग। ये क्वालिटी पार करेंगे तो हम हाईवे से फुल स्पीड में नरक की तरफ जाएंगे, अगर ये 6 क्वालिटी हमारे पास है। तो अर्जुन जब ये सुनते हैं, आसुरी क्वालिटी और दैवी क्वालिटी, तो अर्जुन सोचते हैं कि मैं तो युद्ध करने वाला हूँ, लड़ाई करूँगा, तो कहीं मैं घमंड के कारण तो नहीं कर रहा हूँ। ये सब वस्तुएं अर्जुन सोचते हैं। तो अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं, परंतु भगवान उनको मन में समझ के बोलते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम दैवी गुण में हो, तुम्हारा आसुरी गुण में नहीं हो। भगवान अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि आसुरी गुणों के साथ जन्मा नहीं है वो, युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है। क्योंकि वो अर्जुन को भगवान बताते भी हैं कि क्यों वो आसुरी प्रवृत्ति में नहीं है, क्योंकि अर्जुन युद्ध में लड़ने के पहले ही देख रहा था कि युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये दैवी प्रकृति के व्यक्ति का लक्षण है, चीज़ों को ठीक तरीके से समझना। आसुरी लोग नहीं समझते हैं, तुरंत चालू हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे, तो युद्ध में लड़ने के पहले ही अर्जुन गुण दोषों का विचार कर रहा था और सोच रहा था कि भीष्म द्रोण को मारा जाए कि नहीं मारा जाए, इसलिए अर्जुन क्रोध के कारण काम नहीं कर रहा था, ना तो घमंड के कारण काम कर रहा था। अर्जुन जो है वो दैवीय गुणों के कारण कार्य कर रहा था। अर्जुन के लिए दैवीय गुण, जैसे क्षत्रियों के लिए दैवीय गुण माना जाता है युद्ध, धर्म, युद्ध में लड़ाई करना। तो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा तो दैवीय गुण से विमुख माना जाएगा, क्योंकि उसका जो धर्म है, उसके गुण पे आधारित धर्म जो है, वो बोलता है कि अगर संसार में धर्म का लॉस हो रहा है तो उसको धर्म बचाने के लिए युद्ध करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना तुम्हारे लिए दैवीय गुण है, और तुम वैसे भी दैवीय गुण से जन्म हुए हो। और भगवान बताते हैं दिव्य गुण जो है वो मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और जो इसके पास आसुरी गुण होते हैं वो संसार में बंध जाता है। दो प्रकार के लोग संसार में पाए जाते हैं, दैवीय गुण और आसुरी गुण। दोनों के बीच में एक मेन अंतर होता है। हाँ, दैवी आसुर के बीच में एक मेन अंतर होता है, हमने डिस्कस किया था पिछले शायद 13-14 अध्याय में कहीं पे एक जगह पे ऐसा आया था, हमने डिस्कस किया था कि जो भगवान को मानते हैं वो दैवी माने जाते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो आसुरी माने जाते हैं। और दोनों के बीच में, हाँ, इस अध्याय में एक और चीज़ आता है कि जो शास्त्रों को मानते हैं वो भी दैवी कहलाते हैं, शास्त्रों के आधार पर जीवन जीते हैं वो दैवीय व्यक्ति कहलाते हैं, जो शास्त्रों के आधार पर जीवन नहीं जीते हैं वो आसुरी व्यक्ति कहलाते हैं। इस अध्याय के लास्ट में हम ये श्लोक में देखेंगे भी कि दो प्रकार के लोग किस प्रकार से शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो यहाँ तक भगवान दैवीय गुणों को बताए और अर्जुन को कन्विंस किए कि अर्जुन जो है वो दैवीय गुण में है। इसके बाद 7वें श्लोक से लेके आगे 20 श्लोक तक भगवान आसुरी गुण जो है, उस आसुरी गुण को भगवान डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसको भगवान बताएंगे कि सबसे पहले भगवान बताएंगे कि आसुरी गुण होते क्या हैं, किस तरह से समझ सकते हैं कि आसुरी गुण क्या है, आसुरी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति करने वाले लोग क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि वो काम करने के बाद, काम करने के समय और काम करने के बाद उनके अंदर क्या क्या मेंटेलिटी होता है। तो ये भगवान कभी 13-14 श्लोक में बताने वाले हैं, ये इसका, इस चैप्टर का मेजर सेक्शन है ये। तो भगवान बताते हैं कि आसुरी लोगों का पहला लक्षण होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, प्रवृत्ति मतलब करने के लिए कार्य, निवृत्ति मतलब नहीं करने के लिए कार्य। तो क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, न जना विदुर असुर, ये असुर लोग ये नहीं जानते हैं, वो केवल अपने मन से काम करते हैं, शास्त्रों का ज़्यादा गाइडेंस नहीं लेते हैं। और इन असुरों के अंदर ना तो सफाई पाई जाती है, ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आसुरी स्वभाव, मॉडर्न समाज में जो आसुरी स्वभाव दिखाई देता है, लोग सफाई के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। इनफैक्ट मॉडर्न कपड़े जो हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं जिससे लोग कपड़ों को नहीं धोएं। जैसे जीन्स का आविष्कार इसीलिए हुआ कि व्यक्ति 1 महीने तक जीन्स पहन सकता है, उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैदिक कल्चर में हम कपड़ों को एक बार पहनते थे, उसके बाद धोते थे। तो सामान्यतः कृष्ण भक्तों को भी ये बताया जाता है, हमें इस तरह से सोचना चाहिए, अपना जीवन इस तरह से सोचना चाहिए, जीना चाहिए कि हम स्वच्छता से रह सकें। जैसे भक्त लोग जो बाहर जॉब करते हैं उनको आवश्यक होता है कि वो कर्मी कपड़े पहने, पैंट शर्ट पहने या जो भी है वो पहने, परंतु जब वो घर पे आते हैं तो उनको तुरंत अपने वैदिक कपड़ों को देखना चाहिए। मुझे एक बार बहुत सीनियर भक्त ने बताया था कि हमें मेंटली ये जो वैदिक ड्रेस नहीं है उनको पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक ड्रेस जो वैदिक वर्णाश्रम का ड्रेस है, धोती कुर्ता पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए साड़ी या ट्रेडिशनल कपड़े हैं। तो ये हमें, इससे हमें प्रेम करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण भक्ति कल्चर के साथ एक्सेप्ट होता है। पहले भारत में जो वैदिक कल्चर था उसके साथ कृष्ण भक्ति एक्सेप्ट करना बहुत आसान था, क्योंकि वैदिक कल्चर हमें सिखाता है कि भगवान के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहना है, नेचर पर कैसे डिपेंडेंट रहना है। जबकि आधुनिक कल्चर हमें सिखाता है कि भगवान है ही नहीं। तो आधुनिक कल्चर में चूंकि भगवान सेंटर में नहीं है, इसलिए वो कल्चर हमें कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं सिखाता है। जबकि वैदिक कल्चर में इवन द पहनावा, तिलक का तरीका, वैदिक संस्कार जो थे वो भगवान पे आधारित थे। तो इसलिए न शौचम ना पिचाचारो, जो असुर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें स्वच्छता भी नहीं दिखाई देती है, अच्छे आचरण भी नहीं दिखाई देते हैं, और सत्यता भी नहीं दिखाई देती है। ये तीनों चीज़ें असुर में नहीं पाई जाती हैं। असुर या तो शास्त्रों के नियमों को जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो उनको उसको फॉलो करने की कोई इच्छा नहीं होती है, और उनको शास्त्रों में विश्वास भी नहीं होता है ज़्यादा, ना तो साधुओं में विश्वास होता है, साधु अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर भी उनको विश्वास नहीं होता है। साधु किसको बोला जाता है? आर्य लोग जो है उसको साधु बोला जाता है। आर्य शब्द का मीनिंग है जो कि वैदिक कल्चर को पालन करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, इस तरीके से प्रोपोगेशन भी होता है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, परंतु आर्य जो है वो ब्रह्मा के वंश में से आते हैं, संसार में पहले से वो पाए जाते हैं। तो आर्य लोग जो संसार के सबसे सभ्य लोग होते हैं जो वैदिक वर्णाश्रम को पालन करते हैं। इसके अलावा जो असुर होते हैं वो शास्त्रों के बारे में विश्वास नहीं करते, साधुओं पर विश्वास नहीं करते, उनको कोई फेथ नहीं होता है। ये पहला लक्षण है असुरों का। उसके बाद एक और मेन लक्षण है जिसके कारण असुर लोग पाप करते हैं। असुर लोग जो है वो अनिश्वरवादी होते हैं। अनिश्वरवादी मतलब उनको लगता है कि संसार जो है वो भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि भगवान है ही नहीं कहीं। अनिश्वर मतलब नो ईश्वर। और संसार कैसे बना है? काम हेतुकम, लस्ट के कारण। स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो उससे बच्चे पैदा होते हैं, उससे संसार चलता है, ये उनका फिलॉसफी है। हम समझ सकते हैं कितना बोगस फिलॉसफी है। उनसे पूछना चाहिए स्त्री पुरुष आए कहाँ से सबसे पहले। दो मिलेंगे तो संसार बना, परंतु तो स्त्री पुरुष को किसने बनाया? जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी बोले थे कि संसार के जारे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, वो सभी चीटर हैं। तो वो व्यक्ति ने पूछा कि सारे शिक्षक चीटर कैसे हो सकते हैं? अगर कोई केमिस्ट्री की क्लास में ये सिखा रहा है कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलके जल बनता है, तो वो कैसे चीटर है? वो कैसे लोगों को चीट कर रहा है? वो तो सही बोल रहा है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये बताना, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलके जल बनता है, ये चीटिंग नहीं है। परंतु वो व्यक्ति ये क्यों नहीं बताता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने बनाया? तो आप ये बता रहे हो कि जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, परंतु आप ये नहीं बता रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने बनाया। ये भी आपको बताना चाहिए कि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो भगवान ने बनाया, ये नहीं बता रहे, इसलिए आप चीटर हो। तो जो लोग बोलते हैं कि संसार काम से बना है, उनसे पूछना चाहिए सबसे पहला वो कहाँ से आए, स्त्री और पुरुष, जिसके द्वारा संसार चला है। तो ये अनिश्वरवादी हैं, ये बोलते हैं संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसको कोई ने बनाया नहीं है, और केवल एक दूसरे की काम की इच्छा, लष्ट के कारण ये संसार बना हुआ है। इसलिए ऐसे ऐसे लोग लष्टी होते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि लष्ट के कारण ही संसार बना है। तो उनको जीवन का मेन मेन लक्ष्य दिखाई देता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, लष्ट। और वो मानते हैं कि आत्मा नाम से कुछ नहीं होती है, सब कुछ मैटर, प्रकृति होती है, उसी में से जीव निकल आते हैं और अलग अलग जीव बनते हैं, तो आत्मा नाम से कुछ होता नहीं है। अगर इस कैटेगरी में देखेंगे तो ज्यादातर साइंटिस्ट लोग जो हैं वो असुरों की कैटेगरी में आ जाएंगे, कि संसार में भगवान नहीं है, आत्मा भी नहीं है, और जीवन जो है वो ड्रीम के जैसा है, एक सपने के जैसा है, तो सपने में को जितना एंजॉय करना है कर लो, इस तरीके से लोग बताते हैं। वो सोचते हैं जीवन में ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं, जैसे लाइफ जा रही है तो जाओ और उसको जियेंगे, हम मज़े करेंगे, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। और ये सोचते हैं कि संसार में कोई इस सुपीरियर कंट्रोलर नहीं है, उनको शास्त्र का कोई नॉलेज नहीं होता है। और इस प्रकार से सोचते सोचते अगले 10 श्लोकों में, उन 9वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक ये बताया गया है कि जो लोग ये जो इस प्रकार से लोग सोचते हैं वो कितने कितने खतरनाक कार्य करते हैं। अभी तक हमने उनका विचार देखा, उसके बाद अभी उनके कार्य देखेंगे हम कि क्या क्या कार्य करते हैं। ऐसे निष्कर्ष को पालन करते हुए लोग भयावह कार्य, उग्र कर्म, भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के विनाश के लिए होता है। सामान्यतः जो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं या आत्मा को भी नहीं मानते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते हैं, वो जो काम करते हैं वो दुनिया के प्रति वही दुष्कर होता है। जैसे हम देखें कोई भी चीज़ आप देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, एक तरफ हमें थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिलती है, परंतु संसार को कितना लॉस होता है, टेम्परेचर कितना बढ़ता है, कितने सारी प्रजाति गायब हो जाती हैं, दूसरा लोग अपने खाने के लिए कितने सारा कसाई खाने खोलते हैं, कसाई खाने से कितने सारे पशु मरते हैं। आजकल संसार में सबसे डेंजरस एनिमल मनुष्य ही बन गया है। यद्यपि मनुष्य को सामान्य दिमाग दिया गया है पशुओं से ज़्यादा, परंतु मनुष्य इतनी ज़्यादा क्रूरता, इतना ज़्यादा क्रूरल हो गया है कि संसार का सबसे निचले स्तर का पशु जैसे बन चुका है, क्योंकि अध्यात्म के बारे में उसको कुछ सोचना नहीं है। वो सभी को परेशान करता है, सारे जीवों को परेशान करता है, एटमोसफियर को परेशान करता है, धरती को खोद डालता है, उसके अंदर से सब कुछ निकाल लेता है। तो धरती जो है वो माँ है, मदर अर्थ है, उसको परेशान करते हैं। और साथ साथ हम जानते हैं कि मदर अर्थ और नेचर जो है वो भगवान के द्वारा बनाया है, तो उनकी संपत्तियों पे भगवान का अधिकार है। तो वो संपत्तियां भगवान को समर्पित नहीं करके, भगवान को ना, भगवान को नहीं मान के केवल अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं, तो संसार को विनाश की तरफ ले जाते हैं। जैसे छोटे छोटे विनाश हम देखते हैं, कोरोना, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा है, ये सब मनुष्य के पाप कर्मों का फल है। जो लोग पाप कर्म करते हैं उसके कारण नेचर के द्वारा उसका रिएक्शन देखने मिलता है। तो ये ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे आविष्कार करते हैं कि संसार का विनाश हो जाएगा। जैसे अभी आप देखिए, एटम, अल्फ्रेड नोबल ने जो डायनामाइट बनाया था, तो उनको ऐसा विश्वास नहीं था कि ये जो डायनामाइट ये आगे जाके संसार के लिए इतना डेंजरस हो जाएगा। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया था, परंतु अभी डायनामाइट और ये सब वस्तुएं जो हैं ज़्यादातर बॉम्ब में यूज होती हैं। बाद में एटम बम बना, अभी हर देश के पास एटम बम है, ज़्यादातर देशों के पास, और पूरी धरती इस तरह से है कि अगर लड़ाई हो गई तो किसी ने बटन दबा दिया तो धरती खत्म हो जाएगी। तो कितना डेंजरस स्थिति है अनिश्चयवादी लोगों के द्वारा। और ऐसे लोग काम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि लस्ट के द्वारा ही, लस्ट ही उनका मेन गोल होता है जीवन का। तो काम भावना में डूब के वो घमंड में आ जाते हैं और अब अपवित्र इम्प्योर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो कि विनाशकारी होते हैं। उनको नॉलेज नहीं होता है कि संसार किस दिशा में जा रहा है, उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है, ये भी नॉलेज नहीं होता है। इसलिए हमेशा चिंता में भी डूबे रहते हैं और संसार की जो टेम्प्रेरी चीज़ों हैं उसमें वो डूब जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जीवन जाने वाला है, मृत्यु मृत्यु आ जाएगी। और अशुचि व्रत, अशुचि व्रत यहाँ पे लिखा है, अशुचि व्रत, अशुचि व्रत मतलब अनक्लीन बाउल्स। दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सेक्स इंडलजेंस, इंद्रिय भोग बहुत ज़्यादा करना, स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है उसको अनलिमिटेड तरीके से करना, अनलिमिटेड मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से करना और अपने आध्यात्मिक चेतना को डिस्ट्रॉय करना इसके द्वारा। और दूसरा है संसार में ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की कोशिश करना। ये दो प्रकार की अशुचि व्रत होते हैं जो कि असुर लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री पुरुष आकर्षण में डूब के अपने जीवन को बर्बाद करना। हालांकि स्त्री पुरुष आकर्षण संसार के लिए बनाया, संसार में है, परंतु भगवान भगवद गीता में बताते हैं, हम उसको पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय में, कि नहीं 7वें अध्याय में पढ़ा था, कि जो धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृ स्वभावः, कि धर्म के विरुद्ध अधर्म मतलब जो जो काम भावना धर्म के विरुद्ध नहीं है वो अच्छी मानी जाती है। जैसे पति पत्नी विवाह करके अगर ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो कि बच्चे देश के विकास में कार्य करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो ऐसा ऐसा स्त्री पुरुष का संबंध भगवान मानते हैं वो धर्म का संबंध है। बाकी जो केवल भोग के लिए ये कार्य करते हैं वो असुर माने जाते हैं। और ये लोग इस प्रकार से डूबे रहते हैं कि वो कुछ कुछ धर्म बनाते हैं, अपने मन से कुछ कुछ धर्म बनाते हैं, और उस वो धर्म ऐसे होते हैं कि उसमें वैदिक शास्त्रों का कुछ लेना नहीं पड़ता है, वो केवल अपने मन से सब चलाते हैं, और पूरे संसार ऐसे बनाते हैं जिससे उसके चारों तरफ ऐसे लोग हों जो उनका हमेशा सम्मान करते रहें, और वो सोचते हैं कि बहुत एडवांस हैं। इसके बाद ऐसे लोग, हालांकि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है, इसलिए मरने तक उनको बहुत चिंता बनी रहती है। क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि इंद्रियों की तुष्टि अगर कोई सोचता है कि वो जीवन का लक्ष्य है तो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। आप उसको जो दोगे उसके आगे उसकी इच्छा होगी, इंद्रियों का नेचर ऐसा है। जैसे अग्नि में आप घी डालते रहो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अग्नि संतुष्ट होगी, अग्नि और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसी तरह से इंद्रियों को अगर भोग कराते रहोगे तो इंद्रियां हमेशा असंतुष्ट रहेंगी। तो ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग को ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और हमेशा उनको इच्छाएं होती हैं, आशा पास सत्य बद्ध, हजारों हजारों इच्छाएं उनके मन में होती हैं, उन इच्छाओं को लेके वो मरते हैं, फिर अगला जन्म में फिर लेते हैं, फिर नीचे योनि में जाते रहते हैं। इस तरह इंद्रिय भोग की इच्छाओं को लेते लेते गलत ढंग से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो केवल सेल्फिश होते हैं, किसी दूसरे को मार के, उसको चोरी करके, उसको धोखा दे के धन कमाना जानते हैं, इंद्रिय भोग के लिए अवैध ढंग से धन कमाते हैं। और जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी 2-3 साल बढ़ा दो जिससे हमारी जो इच्छाएं पूरी कर लें। उनको नहीं पता है कि जब मृत्यु आती है तो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, चाहे आप कितने ही डॉक्टर को बुला लो। और अगर आपको 1-2 साल मिल भी जाए मान लो तो भी इच्छाएँ संतुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं, अभी ये इसमें इसमें बताया गया है 13, 14, 15, उनके विचार क्या होते हैं। वो सोचते हैं कि आंसू, व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये और ज्यादा हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। उनके साथ वाले जो लोग हैं उनको वो अच्छा मानते हैं, जो उनके अपोज में गया उसको मार डालते हैं। मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ। ये भगवान के जैसा सोच रहे हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिमान सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। ये व्यक्ति भोक्ता समझते हैं, वो सोचते हैं संसार का सबसे बड़ा हीरो मैं हूँ और जो मेरे साथ वाले हैं वो मेरे अच्छे हैं, बाकी सब मेरे शत्रु हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोह को प्राप्त होते हैं। हमें यह देखना होगा कि ऐसे विचार सोच के हमें लगता है कि हमारे अंदर तो ऐसे विचार नहीं है, परंतु डीपली जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें भी लगेगा कि हमारे अंदर भोग की इच्छा तो है। हो सकता है इतना सारा नहीं हो, क्योंकि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, भगवद्गीता जानते हैं, तो ये लक्षण हमारे अंदर नहीं होंगे, परंतु हमें डीपली देखना होगा कि कुछ भोग की इच्छा तो है, कुछ हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा है जो भगवान से अलग है। हमें भी लगता है कि हम तो थोड़े एडवांस हैं, हम सबसे सही हैं, दूसरे लोग उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी इच्छाएं कुछ ना कुछ आसुविक स्वभाव में हैं। तो संसार में एक तो एक्सट्रीम होता है, कोई पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, एक एक्सट्रीम है जो पूरी तरह से असुर जैसे हैं। अभी हम जो हैं बीच के रास्ते में हैं, शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं, परंतु हमारे पूरी की पूरी आसुविक प्रवृत्ति अभी तक गई नहीं है। तो ऐसे अध्यायों को पढ़ के हमें पता चलता है कि क्या क्या अभी और सुधारना बाकी है, और दैवीय गुण जो भगवान ने बताए हैं शुरू में उनको देख के पता चलता है कि वो हमारा गोल है, वो हमें प्राप्त करना है, और ये जो गलतियां हैं छोटी छोटी हमारे अंदर, उनको सुधार के हमें आगे निकलना है। तो इस प्रकार आगे फिर भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग भौतिक संसार के मोह जाल में फंस जाते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं और इंद्रिय भोग में बहुत आसक्त हो जाते हैं, और फिर पतंती नरक में गिर जाते हैं। उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन उनके पास आए, और वो सोचते हैं कि केवल मैंने ही सब कुछ किया इसलिए मेरे पास आया। कर्म के नियम को भी वो नहीं मानते हैं, अपने खुद का यज्ञ का पद्धति बनाते हैं, जैसे रावण ने एक सीढ़ियाँ बनाई थी स्वर्ग में जाने के लिए, या बड़े बड़े साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों पर जाते हैं मैकेनिकल अरेंजमेंट से। ये अपने खुद की प्रोसेस बनाते हैं, उससे संसार को जीतने की कोशिश करते हैं, और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा घमंड करते हैं, और उनके पास जो पैसा है या प्रतिष्ठा है उससे मोह में डूबे रहते हैं, किसी नियम का पालन नहीं करते और बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, यज्ञ मनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, उनको दिखाना होता है कि देखो मैं इतना धनी हूँ, मैंने ये किया, घमंड के कारण यज्ञ करते हैं। ऐसा यज्ञ जो है वो तमोगुण में आता है, हम देखेंगे 17 अध्याय 18वें अध्याय में उसका डिस्क्रिप्शन आएगा कि ये लोग धर्म अनुष्ठान करते हैं परंतु शास्त्रों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वो केवल ये दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं कि वो कितने दानी हैं और उनका ऐश्वर्य कितना है और कितना वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग यज्ञ करते हैं। तो वो शास्त्र के आधारित जो यज्ञ करते हैं वो भी गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उनको पूरा फल नहीं मिलता है। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि ऐसे लोग हिपोक्रिटिकल नेचर के होते हैं, वो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, जो खुद बोलता है कि मैं भगवान हूँ वो कैसे भगवान को प्रेम करेगा। जैसे अमेरिका में कई बार जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो कुछ कुछ हिप्पी जिस तरह से उनके पास आए थे, तो कई लोग ऐसा सोचते थे कि वो भगवान है, आई एम गॉड। तो एक व्यक्ति थे वो अपने हर जगह पर लिख के रखे थे कि आई एम गॉड उनके शीशे के ऊपर और टॉयलेट में और रूम में भी कई जगह लिखे रहते थे। तो जब वो प्रभुपाद से पहली बार मिले, उन्होंने ये बताया नहीं प्रभुपाद को कि मैं भगवान हूँ इस तरह से, तो प्रभुपाद ने उनको देख के ही बोला कि डोंट ट्राई टू बिकम गॉड, देयर इज ऑलरेडी वन गॉड, ही डजेंट नीड कॉम्पिटिशन फ्रॉम यू, एंड यू कैन नॉट बिकम गॉड, यू कैन बिकम गॉडली। प्रभुपाद ने इस तरह से बोला, डोंट ट्राई टू बिकम गॉड, यू कैन नॉट बिकम गॉड, यू कैन बिकम गॉडली। तो भगवान ने बोला कि आप दैवीय गुण प्राप्त कर सकते हो, भगवान के भक्त बन सकते हो, परंतु भगवान नहीं बन सकते हो। उन भक्त उस व्यक्ति को ये बात इतनी ज़्यादा डीपली अंदर गई कि वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनको कैसे पता चला कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। उन्होंने उसी समय प्रभुपाद के ऊपर उनका विश्वास आया, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा लिया। अभी वो इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं, श्री श्रीमद गिरिराज स्वामी महाराज। तो केवल प्रभुपाद की एक बात से उनको लगा कि ये मेरे प्रामाणिक गुरु हैं। इन्होंने मुझे मुझे पहचान लिया कि मेरे अंदर क्या रोग है। तो ऐसे लोग, हाँ, सामान्यतः ऐसे लोग स्वयं को भगवान समझते हैं। एक्चुअली उस समय कई लोगों का, क्योंकि वेस्ट में जो लोग रहते थे, भारत से बहुत सारे योगी जाते थे, वो योगी इस तरह से सिखाते थे कि कोई भी भगवान बन सकते हैं। कुछ योगी सिखाते थे कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको भगवान बना दूंगा। प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि अगर आप भगवान बना नहीं चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं बन जाते हैं, आपको क्यों पैसे की ज़रूरत है? दैट मीन्स आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। कुछ बोलते हैं कि सब जगह भगवान है, भगवान बनने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद बोलते हैं ये सब फॉल्स बोगस लोग हैं, बोगस बोगस बाबा हैं, इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो फिर अमेरिका में ये लोग बहुत फेमस थे, पर जब प्रभुपाद गए तो बहुत सारे जो सिंसियर लोग थे, इस तरीके के जो हिप्पी थे, जो कि आध्यात्मिक चीज़ों को ढूंढ रहे थे, परंतु उनको ये बोगस लोगों के कारण उनको ज्ञान नहीं मिल रहा था, तो वो प्रभुपाद के संपर्क में आए और फिर प्रभुपाद को उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ भगवान क्या करते हैं, वो भगवान अगले दो श्लोकों में बताते हैं, 19वें और 20वें श्लोक में। 19वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, निराधम हैं, उनको मैं लगातार बहुत सारी असुरों की योनियों में डालता रहता हूँ, जिससे कि वो इसी संसार में रहते हैं, भवसागर से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको मैं लगातार असुर योनि में डालता रहता हूँ। और इससे पता चलता है कि संसार में कौन सी आत्मा, आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सा गर्भ मिलेगा, ये एक्सीडेंटल नहीं होता है। भगवान इसको डिजाइन करते हैं व्यक्ति के कर्म के नियम के आधार पे, कि उसको पशु योनि मिलना है कि मनुष्य योनि मिलना है, कौन सी योनि में उसको जाना है, ये भगवान डिसाइड करते हैं। ये वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है, उस व्यक्ति के कर्म के आधार पे, कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के नियम के आधार पे व्यक्ति आता है। तो आसुरिक योनि वाले लोग जो होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए उनका अगला जन्म हमेशा उनका उनके कर्मों के आधार पर निचली योनि में जाते हैं। भगवान बता रहे हैं, छिपामी अजस्तम अशुभम, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुर योनियों में डालता हूँ। हमेशा वो नीचे नीचे योनि में जाते रहते, पशुओं की योनियों में जाते रहते हैं और नीचे जाते रहते हैं। इसके और अगले में बताते हैं, आसुर योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे लोग जो कि असुर योनि प्राप्त करते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे अधम गति में जाते रहते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, परंतु हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान असुरों पर दया नहीं करते हैं, असुरों को जन्म जन्मांतर तक भगवान असुरों के गर्भ में रखते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होने से उनका अधोपतन होता है, जिससे वो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, इन सब शरीरों में रहते हैं और कूकर सूकर बन जाते हैं। तो भगवान उनसे घृणा नहीं करते, परंतु उनके कर्म इस तरह से होते हैं कि कर्म के नियम के आधार पर वो नीचे जाते रहते हैं। और भगवान अगर किसी को असुरों का वध भी करते हैं तो भी उसके लिए भला होता है। और ऐसे ऐसे प्राणी जब पशु असुर योनि में कई जन्म तक रहते हैं, उसके बाद वो जब नेचर के नियम के आधार पर धीरे धीरे इवॉल्व होके कभी अगर उनको कोई बर्थ मिलता है और फिर भक्त का कृपा होता है, तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत कई कई जन्मों के बाद कुछ चांस है कि हो सकता है, परंतु भगवान असुरों पे इस तरह से कृपा नहीं करते, उनको लगातार उनको ऐसी योनि में डालते हैं कि जिससे कि वो उसमें डूबे रहते हैं। इसके बाद भगवान अगले 3-4 श्लोकों में इस चैप्टर के मेन कंक्लूजन बता रहे हैं। तो इस 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि नरक जाने के हाईवे को भगवान ने पहले बताया था, 6 प्रकार के हाईवे, उसमें से भी 3 जो है वो गेट है नरक के, 3 गेट्स नरक जाने के, 3 गेट्स टू हेल। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों द्वारों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन इन तीन काम, क्रोध और मोह से, काम, क्रोध और लोभ से होता है, और इन तीनों गुणों को कंट्रोल करने से व्यक्ति आसुरी गुणों से बच जाता है और सुख को प्राप्त करता है। अगर हम काम, क्रोध, लोभ को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम आसुरी गुण से बाहर आ जाते हैं। ये तीनों गेट बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि व्यक्ति इन तीनों गेट में अगर घुसता है, अनियंत्रित तरीके से काम, क्रोध, लोभ करता है, तो उसका पतन सुनिश्चित है। फिर वो संसार से बाहर निकलना, मुक्ति उसके लिए बहुत मुश्किल है। और वैदिक लिटरेचर इसलिए बताते हैं कि व्यक्ति को काम को त्यागना चाहिए, अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करना चाहिए। वैदिक शास्त्र में वर्णाश्रम इसलिए बताया गया था जिससे कि व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करे और लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त करे। और 23 में श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों के नियम को अगर कोई पालन करता है, 23 में भगवान बताते हैं कि कोई शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करके केवल अपने मन से काम करता है तो उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ना तो सुख प्राप्त होता है, ना उसको परम गति की प्राप्ति होती है। शास्त्र चूंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो जो व्यक्ति शास्त्रों के नियम को नहीं मानता है और अपने मन से काम करता है, समझना चाहिए कि वो सिद्धि उसको कभी प्राप्त नहीं होगी, परम गति भी प्राप्त नहीं होगी, सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी, सुख भी प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र का मतलब है, शास्त्र विधि का मतलब है शास्त्रों में दिए हुए गाइडलाइंस, सभी का नियम है। जैसे जैसे देश के नियम नागरिक मानते हैं, उसी तरह से शास्त्र के नियम सभी के लिए हैं, और जो नहीं मानते हैं उसको फिर, जैसे देश के नियमों को जो लोग नहीं मानते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, वैसे शास्त्रों के नियमों को जो नहीं मानते हैं उनको मनुष्य योनि नहीं मिलता है, असुर योनि में डाल दिया जाता है। शास्त्रों के नियमों का मतलब है जीवन को सबसे उच्च परफेक्ट अवस्था तक पहुँचाना। तो शास्त्रों के नियमों को जानना इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस नॉलेज को अप्लाई करना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस नॉलेज को अप्लाई करके भगवान के बारे में जानना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान की सेवा करना। तो शास्त्र का अंतिम इंस्ट्रक्शन है भगवान की सेवा करना। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो व्यक्ति असफल हो जाता है। तो हमें अपने मन से काम नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अपने नवरात्रि के समय या गणेश पूजा के समय लोग गणेश के अलग अलग विग्रह बनाते हैं, कहीं एक जगह पे गणेश का विग्रह राधा के साथ बनाया था, तो उससे लोग पाप करते हैं क्योंकि राधा गणेश की माँ के समान है, पार्वती के समान है। इसी तरह से गणेश के हाथ में बांसुरी दे देते हैं, उनको कृष्ण जैसा पहना देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये लोग काम कारता है, शास्त्र के आधार पर काम नहीं करते, अपने मन से कुछ भी करते हैं, उनको लगता है सब कुछ, सबको अपने मन से चल रहा है, जो चाहे वो कर सकते हैं, धर्म के नाम पर जो मजाक चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई धर्म करने का फायदा नहीं मिलता, वो उल्टे उसको पाप मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन को शास्त्र के विधि के आधार पर जानना चाहिए, जीना चाहिए। सबसे पहले सीखना चाहिए शास्त्र की विधि क्या है, उसके आधार पर देखना चाहिए कि शास्त्र में करने लायक वस्तु क्या है और नहीं करने लायक क्या है, और उसके आधार पर कार्य करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को संसार में ऊपर उठा सके। ये अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जीवन शास्त्र का सबसे ऊंचा लक्ष्य है भगवान कृष्ण को जानना, उनकी सेवा करना, और जो भक्ति में नई कार्य कर रहे हैं उनको वैदिक नियम पालन करना चाहिए। वैदिक नियमों को पालन करने करते धीरे धीरे शुद्ध होते हैं तो भक्ति को प्राप्त करते हैं। और शास्त्रों के सिद्धांत, कुछ लोग निराकारवादी होते हैं, कुछ साकारवादी होते हैं, परंतु शास्त्रों के सिद्धांत सभी पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के सोसाइटी में कुछ कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसके कारण व्यक्ति आसुरी योनि में जाता है। एक डिफेक्ट्स तो है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के द्वारा शास्त्रों को नकार देना, शास्त्रों को साधुओं को नहीं मानना, उनकी बात नहीं सुनना, और शास्त्रों को सुनने के बाद भी उससे आकर्षित नहीं होना या उस पर विश्वास नहीं होना, इसके कारण व्यक्ति पशु योनि में या आसुरी योनि में जाता है। तो हमने आज ये सेक्शन डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि छोटा चैप्टर है परंतु इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हमने देखा कि भगवान ने डिवाइन क्वालिटीज़ बताई 26 क्वालिटी, उसके बाद 6 डेमोनियल क्वालिटीज़ बताई भगवान ने, और अर्जुन को बताया कि तुम देवी गुणों से संबंधित हो। उसके बाद भगवान 10, 12, 13 श्लोकों में आसुरिक स्वभाव, आसुरी लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, और आसुरी लोगों की क्रियाएं क्या होती हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, और उनको करने से उनको क्या फल मिलता है, ये भगवान ने डिटेल में बताया 13, 14 श्लोक में। उसके बाद भगवान ने बताया कि नरक के 3 द्वार होते हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए वैदिक नियमों को पालन करके, और जो वैदिक नियमों को पालन नहीं करते उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन को हमें इस तरह से जीना चाहिए कि हम शास्त्रों को पालन करें, जिससे कि शास्त्रों को पालन करें उसके आधार पर कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। तो ये इस अध्याय में है। कल हम देखेंगे 17 चैप्टर, श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ, जो कि जो भी ज्ञान के लिए इम्पॉर्टेंट अध्याय है। अच्छा, एक भक्त ने मुझे प्रश्न किए हैं व्हाट्सएप पे, 14वें अध्याय जो प्रकृति के गुण है उसके आधार पे प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, सत्वगुण में पहुंचना जरूरी है क्या, केवल भक्ति करने से काम हो जाएगा? तो इसका उत्तर है कि वास्तविकता में भक्ति करने से हम धीरे धीरे सत्वगुण में आएंगे। अगर हम कहीं से भी भक्ति करते हैं, रजोगुण से प्रारंभ करते हैं, तमोगुण से प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे हमारी सत्व संशुद्धि होगी, भक्ति की क्रियाएं जैसे सुबह उठना, नाम लेना, ये अपने आप में व्यक्ति को शुद्ध करती हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होगा वैसे वैसे वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में आएगा और फिर सत्वगुण से भी ऊपर चला जाएगा। तो रीचिंग सत्वगुण नेसेसरी, मतलब वो एक स्टेप के जैसा है, जब आप ऊपर आएंगे तो एक स्टेप आएगा जब आप सत्वगुण में आ जाएंगे और फिर उसके बाद उसी स्टेप को पार करके आपको शुद्ध सत्व में जाना है। तो भक्ति करने से अपने आप हम उस स्टेप पे आ जाते हैं। अलग से प्रयास करना सत्वगुण में रहना, उसके नियम हैं, परंतु भक्ति में वो सारे नियम सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एक और प्रश्न था कि गुणों के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई बीमारी होती है तो ये बोलता है कि ये चीज़ मत खाना और ये चीज़ खाना, तो उस नियम को अगर पूरा पालन करेंगे तभी पूरा फायदा मिलेगा। तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि ये गुण के द्वारा भौतिक संसार पोषित है। तो अगर हम गुणों को जानेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन से गुण में हम हैं। सबसे पहले तो अपनी स्थिति पता चलेगी कि हम किस गुण में हैं। नहीं तो कई बार हम ही सोचते हैं कि हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, भक्ति भी बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु जब हम ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये गलती है हमारे अंदर। दैट मीन्स हम अभी तक सत्वगुण में नहीं है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो हम भक्ति में स्ट्रेंथ लाते हैं और किस गुण से कैसे निकलना है उसका ज्ञान भी भगवान बताते हैं कि कौन से गुण से कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो ये तीनों गुणों का ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं कि अभी तक के बताए हुए ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी एक जगह पर बताते हैं कि वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है, और उनके शिष्य पूछते हैं कि भगवान का नाम लेने से वैष्णव बन जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें पता है कि हम कैसा भगवान का नाम लेते हैं, शुद्ध नाम का जब हम सबके लिए मुश्किल है, हम अपराध वाला नाम लेते हैं। इसलिए हम भक्ति का क्रियाओं के साथ साथ शास्त्रों में जो ये नियम दिए हुए हैं इनको भी पालन करने की कोशिश करेंगे तो भक्ति करने में आसानी मिलेगी। इसके बाद ये प्रश्न है कि 14वें अध्याय में एक श्लोक आया था कि सत्वगुण में जो व्यक्ति होते हैं उसके शरीर के 9 द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, 9 doors आर इल्यूमिनेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रकाशित होने का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसके मुख से प्रकाश निकलने का मतलब मुख से वो केवल आध्यात्मिक वस्तुओं को बोलेगा, भगवान के बारे में बोलेगा। उसके शरीर ज्ञान से प्रकाशित होगा, मतलब उसको ये चीज पूरी तरह से पता है कि मुझे मेरे शरीर के सारे कार्य भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए, आध्यात्मिक तरीके से होना चाहिए। उसकी आंखें केवल भगवान के बारे में देखने के लिए उपयोग की जाएंगी, उसका जो हाथ हैं वो भगवान के विग्रह को छूने में, भगवान के विग्रह की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में उपयोग किए जाएंगे। तो इस प्रकार के शरीर के सारे द्वार, पूरा शरीर जो है वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह से उस सेंटेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कि जैसे हमने देखा था उस अध्याय में कि पेड़ और पौधे जो हैं वो तमोगुण में आते हैं, परंतु तुलसी कदम्ब ये सब पेड़ तो बहुत महान माने जाते हैं, तो ये भी तमोगुण में आते हैं क्या? तुलसी का एक अलग लीला है पूरा, उस लीला के कारण तुलसी महारानी पेड़ के रूप में आती हैं, और साथ साथ तुलसी महारानी एक पेड़ के रूप में आके हमें उनकी सेवा का मौका देती हैं, जिससे भगवान के एक शुद्ध भक्त की सेवा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो तुलसी महारानी का एग्जाम्पल एकदम अलग है। तुलसी महारानी यद्यपि पेड़ के रूप में है परंतु वो इस संसार की नहीं है, दिव्य है। कुछ कुछ पेड़ होते हैं जो कि अलग अलग देवता को डिनोट करते हैं उनकी पूजा करने से, जैसे बरगद की पूजा भी भारत में लोग करते हैं, कदम्ब के वृक्ष वृंदावन में पाए जाते हैं, तमाल के वृक्ष वृंदावन में पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष हम समझते हैं कि ये विशेष वृक्ष हैं और ये देवताओं के या भगवान के प्रतिनिधि जैसे माने जा सकते हैं। इनकी अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान उसको उनके द्वारा स्वीकार करते हैं, तो ये विशेष वृक्ष माने जा सकते हैं। परंतु तब भी सारे वृक्ष उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कदम के वृक्ष हम देखें तो वृंदावन में जो कदम है उसको हम मानते हैं, हर जगह जो कदम है उसको हम इस तरह से नहीं मानते हैं कि उतना उतना स्पेशल तरीके से है। तो इन जनरल जब बताते हैं शास्त्रों में तो योनि के बारे में बताते हैं, वो योनि तमोगुण में है। उस योनि में कुछ कुछ स्पेसिफिक वस्तुएं हो सकती हैं जो भगवान ने सिलेक्ट किया है लोगों को कृपा करने के लिए, कृपा प्रदर्शित करने के लिए। एक और प्रश्न था कि मायावादी फॉल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो भक्ति में एंगेज नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि मायावादी किसको बोलते हैं। मायावादी और ब्रह्मवादी में अंतर होता है। ब्रह्मवादी मतलब जिनको भगवान के आकार के बारे में पता नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति को ही जानते हैं, तो वो तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, बाद में वो भगवान के चरणों की सेवा नहीं करने के कारण पतित हो जाते हैं। परंतु मायावादी जो है वो अलग हैं। मायावादी का मतलब होता है जो कि भगवान के रूप को मानना ही नहीं चाहते हैं। मायावादी को कृष्ण अपराधी बोला जाता है, उनको भगवान का रूप बताते भी हैं तो भी वो उसके लिए अपराध करते हैं। तो मायावादी जो हैं वो सामान्यतः ब्रह्म ज्योति में नहीं जाते हैं, वो पतित हो जाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण के लिए अपराध करते हैं उनका पतन होगा, उनका एलिवेशन नहीं होगा। तो मायावादियों का एलिवेशन नहीं होता है जब तक वो अपनी मेंटेलिटी को नहीं सुधारते हैं। और साथ साथ एक और अनाउंसमेंट था, आपका जो अध्याय 13 का जो क्विज हुआ था उस क्विज के आंसर आज हमें बताना है। तो मैं किस 5 टॉप 5 जो लोग हैं उनके नाम बताऊंगा। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से लेक्चर सुना, और जिससे कि वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी ला पाए हैं। फर्स्ट रैंक पे, अच्छा नीचे से चालू करते हैं, 5वें नंबर पे हैं सागर सोलंकी प्रभु, उनके मार्क्स हैं 23,685। फोर्थ रैंक पे हैं जिगीसा साह माता जी, उनके मार्क्स हैं 31,613। थर्ड रैंक पे हैं सनातन शिक्षा प्रभु, इनके मार्क्स हैं 36,012। सेकेंड रैंक पे हैं सोहम प्रभु, इनके मार्क्स हैं 39,152। और फर्स्ट रैंक पे हैं ऋषि प्रभु, उनके मार्क्स हैं 39,473। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से सुना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वास्तविकता में इस क्विज को रखने का हमारा यही उद्देश्य था कि आप लेक्चर का श्रवण अच्छे से कर सकें, और बाद में जब क्विज में हिस्सा लेंगे तो आप आसानी से जो भी लेक्चर के पॉइंट्स हैं उसको इम्बाइब कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इनको इसमें अच्छे से भाग लिया है और जो इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। सनातन शिक्षा प्रभु, सोहम प्रभु और ऋषि प्रभु टॉप 3 जो हैं, और जिगीसा माता जी और सागर सोलंकी प्रभु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए। इन सारे अध्यायों को जब हमारी क्लास होती है उसके बाद आप एक बार फिर से पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता यथा रूप की जय।